वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
क्यों है नफरत किसी के मन में? संसार का उसने सूली पे जान दी कि हम पाए नई जिंदगी। करना क्षमा सिखाया हमें, जीतना प्यार से बताया हमें।
हम एक है दिल से कहे एक है, सब एक है दिल से कहे एक है। हम एक है दिल से कहे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मैं अपने नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाइबल की पुस्तक में से पहले शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइलियों ने परमेश्वर से राजा की मांग की और उसने उन्हें दिया, परंतु परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। अब क्योंकि शाऊल राजा बन गया था, इसलिए शमूएल सेवानिवृत्त होता है और अपना अंतिम सार्वजनिक संदेश देता है, जिसे हमने पिछले अध्ययन में शमूएल के विलाप गीत के रूप में देखा। मित्रों, वह स्पष्ट कह देता है कि राजा मांगने में उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है, परंतु यदि वे फिर भी परमेश्वर की सच्ची उपासना और आज्ञाकारिता में रहेंगे तो व्यर्थ की बातों को त्याग करेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। और सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु यदि वे बुराई करेंगे तो वे भी और राजा भी नाश किए जाएंगे। अंत में वह कहता है, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। मित्रों, हम देखते हैं कि शाऊल का परमेश्वर से विद्रोह। शाऊल अब अपना वास्तविक स्वभाव को प्रकट करता है। एक मास में उसका पुत्र पलिस्तियों पर विजयी होता है, परंतु शाऊल तुरही बजाकर विजय का सेहरा अपने सिर पर बांधता है। शाऊल याजकीय सेवा में भी हस्तक्षेप करता है और शमूएल उसका त्याग करता है। इसराइल का निरस्त्रीकरण प्रकट किया जाता है। मित्रों, इस अध्याय में मैं अध्याय 9 के अध्ययन में कही गई बातों को भी पुष्टि करूंगा। शाऊल ऊपरी दिखावे का राजा था और भीतर से वह राजा था ही नहीं, वह एक आडंबरी राजा था। तो आइए हम 13 अध्याय में देखेंगे, पहला शमूएल 13 अध्याय 1 से 4 पद में। लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इसराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इसराइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2,000 शाऊल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1,000 योनातान के साथ विन्यामिन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने, और सब इसराइलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिस्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। मेरे प्रिय मित्रों, शाऊल का वास्तविक चरित्र अब प्रकट होने लगता है। जब हम उसे ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वह एक आडंबरी व्यक्ति था। हम पढ़ते हैं, योनातान ने पलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में था मार लिया। इस विजय का श्रेय किसको मिला? शाऊल को। ऐसा प्रतीत होता है कि योनातान एक सिद्ध सेना नायक था। आगे हम देखेंगे कि वह एक अति विचित्र युक्ति द्वारा एक और महान विजय को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ योनातान ने युद्ध किया और विजय प्राप्त की और शाऊल ने तुरही फूंकी। उसने विजय का श्रेय अपने ऊपर लिया। मित्रों, वह यह मानता था कि अपनी प्रशंसा स्वयं ही न करो तो क्या लाभ। शाऊल ने अपनी प्रशंसा स्वयं ही की। उसने युद्ध विजय का श्रेय अपने पुत्र को नहीं दिया। उसने संपूर्ण इसराइल को सूचित करके झूठी कहानी सुनाई। मेरे मित्रों, सेना और योनातान तो जानते थे कि उसका डींग मारना झूठा है। जनता अब समझने लगी थी कि शाऊल की सेना में कोई कमी है। वही उसकी दुर्बलता थी। क्या वह दीन मनुष्य था? मैंने आरंभ में ही कह दिया था कि उसकी दीनता झूठी थी और यह सच अब सामने आ रहा है। आइए हम पहला शमूएल 13 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ें। और पलिश्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इसराइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गढ़ों में जा छिपे। मेरे प्रियो, पलिस्तियों ने अपनी हानि से उभर कर इसराइल पर बलपूर्वक आक्रमण किया। तब हम पहला शमूएल 13 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। मेरे प्रियो, यहाँ शाऊल का एक और अनाचार दिखाई देता है। उसने सोचा कि राजा होने के कारण वह होम बलि चढ़ा सकता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि एक और राजा उज्जियाह ने भी सोचा कि वह याजक का काम करने के योग्य है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय और परमेश्वर के दंड स्वरूप वह कोढ़ी हो गया, इसके बारे में हम पाएंगे। शाऊल ने परमेश्वर के निर्देश को अनदेखा किया कि लेवी गोत्र का याजक ही होम बलि चढ़ा सकता था, परंतु उसने क्या किया? आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला शमूएल 13 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रियो, अब आगे देखिए। शाऊल शमूएल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। वह अधीर और अपनी कल्पना करने वाला मनुष्य था। उसने सोचा कि उसके पास 3 कारण है कि वह शमूएल की प्रतीक्षा न करे। पहला कारण, शमूएल विलंब कर रहा था, और दूसरा, पलिस्ती चढ़े आ रहे थे, तब तीसरा, सेना तितर बितर हो रही थी। निसंदेह शाऊल तर्क का सहारा ले रहा था, परंतु वह दूसरों पर भी दोष डाल रहा था। पहला शाऊल 13:12 में लिखा है, तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। मेरे मित्रों, शाऊल ने कहा कि उसने न चाहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। क्या मैं कह सकता हूं कि वह झूठ बोल रहा था? वह झूठी धार्मिकता दर्शा रहा था। देखिए, वास्तविक शाऊल अब प्रकट हो रहा था, जिसे सब लोग देख रहे थे। हम पहला शाऊल 13:14 उसके 14 में पढ़ते हैं, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जी हाँ, शाऊल से आरंभ में ही कहा गया था कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो आशीष पाएगा, परंतु यदि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे दंड मिलेगा। मेरे मित्रों, शासक को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। आज संसार में ऐसे ही शासकों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के द्वारा संचालित हो। यही हमारी समस्या है कि हमारे पास ऐसे शासक नहीं है। यह तो तब ही होगा जब प्रभु यीशु फिर पृथ्वी पर आएगा। यही पृथ्वी के लिए परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य है। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इस कारण परमेश्वर ने किसी और को राजा होने के लिए चुन लिया, जिसे वह कुछ समय बाद दृश्य में उभारेगा। इस समय तो शाऊल को भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है। आइए हम आगे पढ़ें, पहला शाऊल 13:15 उसके 15-17 में, तब शाऊल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गीबा में रहे, और पलिस्ती मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे, और पलिस्तियों की छावनी से नाश करने वाले 3 बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि युद्ध आरंभ होने पर है और हम यहाँ निरस्त्रीकरण का संकट देखेंगे। आज कुछ लोगों का मानना है कि निरस्त्रीकरण से युद्ध समाप्त हो जाएंगे, और कुछ ना है कि हथियारों का नियम बनाने से दुष्ट निष्क्रिय हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप दुष्टों को हथियार से वंचित नहीं कर सकते हैं। यह केवल एक धारणा है और यह मूर्खता का विचार है। पहला शाऊल 13:13 उसके 19-21 में हम पढ़ते हैं, और इसराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिस्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने ना पाए, इसलिए सब इसराइली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि पलिस्तियों ने इसराइल को हथियारों से वंचित किया हुआ था। उनके पास केवल खेती के साधन मात्र ही थे। उन्हें हथियारों पर धार लगाने के लिए पलिस्तियों के पास जाना पड़ता था, अतः उनके पास इसराइल के हथियारों का लेखा था। हम पहला शाऊल 13:22-23 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवारें थी न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे, और पलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। मेरे मित्रों, केवल शाऊल और योनातान के पास तलवारें थी। मेरे विचार में अन्य सैनिकों के हाथ में केवल कुल्हाड़ियां, भाले और लाठी, हंसुआ जैसे हथियार थे। शाऊल की सेना के पास युद्ध के लिए यही हथियार उपलब्ध थे। मित्रों, यहां पर 13 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 14 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। यहां पर हम देखेंगे पलिस्तियों पर योनातान की विजय, शाऊल की अविवेकी आज्ञा का उल्लंघन भी हम देखते हैं। पलिस्तियों पर योनातान की विजय, एक बार फिर योनातान को महान विजय मिलती है और शाउल फिर उसे अपने नाम कर लेता है। वह योनातान से भी जलने लगा था और कर पाता तो क्या करता, उसे नाश कर देता। अध्याय 14 में योनातान की रणनीति का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति ने तुर्की पर सफल आक्रमण से एक रात पूर्व यही अध्याय पढ़ा था। मेरे लिए यह एक रोचक वर्णन है। मैं आपको इस रणनीति का विवरण नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वहां की भूगोल का अधिक ज्ञान नहीं है और न ही मैं सेना का कर्मी हूं। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विचार है कि जब सेनापति एलएनवी ने यह अध्याय पढ़ा होगा तब उसे योनातान की रणनीति का बड़ा रोमांचक प्रकाशन प्राप्त हुआ होगा। अंग्रेजी सेनापति एलएनवी एक विश्वासी था जिसे बाइबल का ज्ञान था और योनातान की रणनीति यह थी कि वह अपने सैनिकों को एक सक्रिय दर्रे से ले जाए। यहाँ सीमित हथियारों के उपरांत भी योनातान की सेना अच्छी स्थिति में थी। ऐसा ही युद्ध प्राचीन यूनान की सीमित सेना ने थर्मोपाइले के दर्रे में असंख्य फारसी सेना से लड़ा था। मेरे प्रियो, इसराइल के लिए यह रणनीति कार्यकारी सिद्ध हुई क्योंकि वे पलिस्तियों से संख्या में कम ही नहीं लगभग वे निहत्थे थे। हम युद्ध के विवरण की अपेक्षा यहाँ विहित आत्मिक शिक्षा पर ध्यान देंगे। आइए हम पहला शामुएल 14 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। तब शाउल ने अहिया से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तो परमेश्वर का संदूक इसराइलियों के साथ था। शाउल को युद्ध के मैदान में वाचा का संदूक लाने की आवश्यकता नहीं थी। हमने पहले भी देखा है कि इसराइली वाचा का संदूक युद्ध में ले गए थे और इस अंधविश्वास से कि युद्ध में उनका विजय होगा, संभवतः शाउल भी यही विचार के साथ में संदूक को युद्ध की भूमि में ले गया। हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 14 अध्याय के 23 पद में। तब यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेताबेन की परली ओर तक चले गए। मित्रों, शाउल द्वारा वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में लाने के उपरांत भी योनातान की रणनीति के द्वारा इसराइल युद्ध में विजयी हुआ। परमेश्वर इसे युवक के साथ था परंतु दुर्भाग्य से वह अधिक दिन जीवित नहीं रहा। उसी दिन परमेश्वर ने इसराइल की रक्षा की। हम आगे देखते हैं शाउल की अविवेकी आज्ञा का उल्लंघन। पहला शामुएल 14 अध्याय उसके 24 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु इसराइली पुरुष उस दिन तंग हुए क्योंकि शाउल ने उन लोगों को शपथ धरा कर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया, तब उसकी आंखों में ज्योति आई। मेरे प्रिय मित्र, यह बड़ी रोचक बात है कि योनातान अपने पिता की उस आज्ञा से अनभिज्ञ था कि युद्ध जीतने तक कोई कुछ नहीं खाएगा। अब शाउल का वास्तविक स्वभाव सामने आ रहा है। योनातान ने युद्ध में विजय प्राप्त की और शाउल ने उसका श्रेय लिया। वह अपने पुत्र को इसका श्रेय देना नहीं चाहता था। उसका निर्भिमान यहां समाप्त हो गया। उसकी ईर्ष्या भी प्रकट हो रही है। पहला शामुएल 14 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ धरा के कहा, शापित हो वह जो आज कुछ खाए, और लोग थके मांदे थे। योनातन ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों से कैसी सूझने लगा। यदि आज लोग अपने शत्रुओं के लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता, अभी तो बहुत पलिस्ती मारे नहीं गए। शाउल की यह आज्ञा मूर्खता की थी। सैनिक थक गए थे, उन्होंने युद्ध किया था और जीत गए थे। उन्हें खाने की आवश्यकता थी। शाऊल ने कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति से मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। मित्रों, उसका निर्भिमान पूरी तरह समाप्त हो गया था। हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल 14 अध्याय के 35 पद में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई, वह तो पहले वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के लिए वास्तव में एक वेदी बनाई और बलि भी चढ़ाई। पहला शमूएल 14 अध्याय के 36 और 37 पद में हम पढ़ते हैं, फिर शाऊल ने कहा, हम इसी रात को फिलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम इधर परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछवाया कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं, क्या तो उन्हें इसराइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। परमेश्वर उसे काम में नहीं ले रहा था। तब हम पहला शमूएल 14 अध्याय उसके 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर बुझो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इसराइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन के शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। मित्रों देखिए, शाऊल अपना दोष कभी स्वीकार नहीं करता था, वह दूसरों को ही दोष देता था। सेना चुप थी क्योंकि वे जानते थे कि विजय योनातान के कारण हुई थी। अब शाऊल कहता है, परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया, इसका कारण है कि किसी ने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके शपथ को तोड़ा है। सैनिक तो जानते थे कि योनातान ने शहद खाया था और शाऊल ढोंग रच रहा है। वे शांत थे क्योंकि शाऊल उनका राजा था। हम पहला शमूएल 14 अध्याय के 40 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उसने सारे इसराइलियों से कहा, तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जो तुझे अच्छा लगे कर। तब हम पहला शमूएल 14 अध्याय के 41 पद में पढ़ते हैं, तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इसराइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। शाऊल ने मान लिया कि योनातान दोषी है। तब हम पहला शमूएल 14 अध्याय उसके 42 और 43 पद में पढ़ते हैं, फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख तो लिया है और देख, मुझे मरना है। योनातान दोषी था, उसने वह किया जिसे न करने की आज्ञा शाऊल ने दी थी। शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, क्या यह मृत्यु दंड के योग्य बात थी? पहला शमूएल 14 अध्याय 44 और 45 पद में लिखा है, शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे वरन इससे भी अधिक करे, हे योनातान तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इसराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा ना होगा, यहोवा के जीवन के शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि शाऊल का पुत्र भी बीच में आएगा तो वह उसे नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वह अपने पुत्र से भी ईर्ष्या करने लगा था। वह केवल अपनी ही महिमा चाहता था। सेना शाऊल के क्रोध उगलने तक शांत थी, परंतु जब योनातान की जान पर बन आई तब वे चुप न रह पाए। अब शाऊल का वास्तविक चरित्र प्रकट हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि वह परमेश्वर से खुला विद्रोह करता है। वह ऐसा काम करेगा जिसके कारण इसराइल पर संकट आएगा। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो इसराइल का सर्वनाश हो जाता। शाऊल प्रकट कर रहा है कि वह परमेश्वर का जन नहीं है, वह वास्तव में शैतान का जन है। अगले अध्याय में स्पष्ट होगा कि शाऊल परमेश्वर का आज्ञा पालक नहीं रहा, वह अपनी इच्छा पर चल रहा है और अंत में परमेश्वर का आत्मा उससे बात करना बंद कर देता है। तब परमेश्वर उससे संबंध तोड़ देता है और वह दुष्ट आत्माओं की ओर उन्मुख होता है। वह इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली के पास में भी गया। यह आज के युग में एक बड़ी शिक्षा है। जब संसार आत्माओं, शैतान की उपासना, खगोल शास्त्र और तंत्र मंत्र की ओर झुक रहा है। मित्रों, आज यह मेरे लिए और आपके लिए कितनी दुखद बात है कि मनुष्य परमेश्वर के पास आने के बजाय वह अपने आप में व्यस्त है और परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में शाऊल की तरह अपने अभिमान में डूबे हुए हैं। अपने मित्र, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जबकि परमेश्वर शाऊल को बार बार अवसर देता रहा लेकिन वह पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या आज आप भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? मेरे मित्र, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के निकटता में लाएं और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन को बचा सकता है, आपके जीवन में उस उद्धार के आनंद को दे सकता है। सिर्फ आपको उसके पास आना है, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपना है, अर्थात अपने हर एक कमी घटियों को उसके सामने मान लेना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे जीवन में आप बदलाहट दें, मैं बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है और आपने यह भी निर्णय लिया है कि आप शाऊल के समान जीवन नहीं जिएंगे, परंतु परमेश्वर के समक्ष एक सही जीवन जिएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा। आया है ढंग तू एक सवेरा, आया है ढंग तू एक सवेरा। धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर।